क्या तुम रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते?
सोच रहा हूं, लेकिन अभी तो कई साल है।
मैं तो 2 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा।
मालूम,
मगर पहले तुम्हें अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचना चाहिए, फिर खुद शादी करो और आराम से कहीं ज़रात में लग जाओ।
इस फिक्र में तो हूँ, मगर अब वो ज़माना नहीं रहा जो हमारे टाइम पर था। मुझे तलाश नहीं करना है, वो खुद मुंतखब करता है।
ये दो तस्वीर सुबह और शाम की, यानी जब इंजीनियर बराजंदे घर से बाहर निकले और जब लौट कर घर वापस आए। अगर हम इन तमाम गाड़ियों को छोड़ दें जो बिल्कुल खाली हैं और पार्क हैं, तो फिर हमारे सामने ये गाड़ी बचती है। ये गाड़ी सुबह से शाम तक इसी सड़क पर मौजूद थी। मैंने अभी जहांगीर को फोन किया था, इसने बताया ये गाड़ी अभी भी इसी सड़क पर है।
अच्छा, ये बताओ गाड़ी में सवार लोगों की तादाद में कमी ज्यादती नहीं हुई?
नहीं, तादाद में तो कोई कमी पेशी नहीं हुई। एक औरत और एक मर्द हैं।
इन दोनों के चेहरे कोई तस्वीर हमारे पास नहीं है?
अभी नहीं है, लेकिन जहांगीर वहीं पर है, हमें तस्वीरें भेज सकते हैं।
तो फौरन भेजे।
माफ कीजिएगा, शीशा नीचे कर सकती हैं आप? 2 घंटे से ये पता ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा।
मैंने क्या किया, गुस्सा हो गई?
देखो तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि हमारी पोजीशन कैसी है। हमारी पोजीशन ऐसी नहीं है कि तुम सड़क पर खड़े होकर किसी से भी दोस्ती करो, यादें बयान करने लगो।
लेकिन मैंने उसे अपनी यादों के बारे में तो नहीं बताया ना।
अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका हो तो तुम ये भी करते?
चलो ठीक है, तुम सही कहती हो, मैं कभी कभी बेकाबू हो जाता हूँ, अचानक सारी बातें सबको बता देता। अब तुमने तो मुझे पहचान लिया है ना, तुम मुझे बोलने ना दो, मुझे सब बातें ना करने दो, ठीक है?
नहीं, मेरे पास ये सब करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। या तुम खुद इंसानों की तरह अपने मुंह पर ताला लगा लो, या मैं नानसी को फोन करके कहती हूँ कि हमारे रास्ते अलग कर दे, तुम्हें कोई और काम दे दे मुझे।
अरे नहीं, खुदा के वास्ते ये काम ना करो, तुम्हें खुदा की कसम।
देखिए इंजीनियर साहब, हम आपको सिक्योरिटी गार्ड देना चाह रहे हैं।
लेकिन तय तो कुछ और हुआ था, मैंने तो पहले कह दिया था कि मुझे सिक्योरिटी वगैरह नहीं चाहिए।
हम अपने कौमी सरमाए के मामले में तो कोई जोखिम नहीं उठा सकते।
प्लीज आप मुझे मुकद्दस मुजस्मा ना बनाइए, मुझे बहुत अजीम इंसान ना बनाइए। मेरी बीवी की हालत भी ठीक नहीं है, वो बीमार है। अगर इसे पता चल गया कि आपने सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया है, तो इसे लगेगा कि कोई मुझे कत्ल करना चाहता है, फिर मुमकिन है कि इसकी हालत और ख़राब हो जाए। इतनी जल्दी आप लोग मुझसे मायूस हो गए?
हमारा दिल कुछ कहता है मगर अक्ल कुछ और।
बेशक मैं भी अक्ल की ही बात मानूंगा,
लेकिन मैं तो हमेशा दिल की बात सुनता हूँ, मगर मुश्किल ये है कि मैं 6-6-5 में पड़ गया हूँ। मुझे बीवी से भी कहना है, मुझे वक्त दीजिए, मैं बात करता हूँ।
मैं अबू का नशा छुड़वा दूंगा, एक कमरा उन्हें दे देंगे, वहीं वो आराम से रहेंगे, ठीक है? उनको हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। यकीन करो, शराब की लत पड़ने से पहले वो घर के कामों में अम्मी की मदद किया करते थे, मेरे अबू खाना भी अच्छा बना लेते।
तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम उनके नशे की लत छोड़ाओ, बस इतना कर सकते हो कि उनका सामान समेटो और ओल्ड एज हाउस में डाल दो। तुम मजबूर हो, तुम्हें समझ में आ रहा, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है।
السلام علیکم.
علیکم السلام. کیا ہوا
ناہید؟ ناہید ناہید کیا ہوا ہے؟ ناہید بتاؤ تو. ناہید بات کرو.
ساری غلطی ابو کی ہے.
نہیں
تم کچھ زیادہ ابو کا دفاع کر رہی ہو.
امی بیمار ہو گئی ہیں. ان کی بیماری کا ابو سے کوئی مطلب نہیں.
کیوں نہیں بالکل مطلب ہے. ابو کی دوسری شادی سے پہلے امی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی. کیا ٹھیک نہیں تھی؟
ٹھیک تھی.
امو امی سے پیار کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟
ہاں.
تو پھر کیوں جا کر دوسری شادی کر لی؟ کیوں؟ مت سنو مریم. میں کہہ رہا ہوں میری بات کا جواب دو. کیوں؟
میں نہیں جانتی میلاد. میں نہیں جانتی.
نازنین تم ادھر آؤ. بیٹھ جاؤ. رو مت میری بات سنو. احسان پور نام کا ایک آدمی ایک اور آدمی کے ساتھ جو اسی کی عمر کا رہا ہوگا آئے تھے یہاں پر. ابھی سورج نہیں ڈوبا تھا. وہ لوگ آئے تو ناہید نے مجھ سے کہا کہ کمرے میں چلی جاؤں اور باہر نہ نکلوں, دروازہ بھی بند کر لوں.
تمہیں یہ نہیں بتایا کہ کمرے کے اندر کیوں جانا ہے؟
نہیں مجھ سے کچھ نہیں کہا. ویسے میں نے خود بھی ناہید سے سوال نہیں کیا. میں کمرے کے اندر چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا. 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگا ہوگا کہ اسی آدمی نے مجھے بلایا, مجھ سے کہا کہ ان کا خیال رکھوں. میں ناہید کے پاس گئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. وہ شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی. میں نے اس کا چہرہ دھلایا, ناہید کو نیند کی ٹیبلٹ دی. ناہید سے میں نے کہا کہ لیٹ جاؤ, اپنی آنکھیں بند کر لو اور کسی بھی چیز کے بارے میں نہ سوچو. ناہید نے ایسا ہی کیا. اسے سکون مل گیا. میں اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ گئی, اسے دیکھ رہی تھی. 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں ہوا ہوگا کہ اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی. ایسا لگا کہ پھر وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کچھ نہیں بولی. اس وقت سے اب تک اسی طرح وحشت زدہ اور پریشان ہے.
ضرور ناہید سے انہوں نے کچھ کہا ہے جو پریشان ہے.
ہاں احسان پور صاحب کو معلوم ہے, تم اس کی بہن ہو. اگر تم احسان پور صاحب سے پوچھو تو شاید بتا دیں.
کل میں ادارے جاؤں گی اور ان سے جا کر پوچھوں گی.
تم ان کے موبائل پر فون کر لو.
میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے.
ان کا نمبر ناہید کے موبائل میں ہے. یہاں آنے سے پہلے انہوں نے ناہید کو فون بھی کیا تھا.
ناہید کا موبائل اس کے پاس ہے؟
ہاں اس کے بیڈ کے پاس ہی ہے. مجھے یاد نہیں تھا. آؤ.
نازنین تم مجھے کچھ نہیں بتاؤ گی؟
کیا بتاؤ؟
یہی کہ اس وقت ناہید کی حالت کیوں ہے.
دیکھو نادر ابھی تو خود مجھے بھی نہیں معلوم.
تم مجھ سے چھپا رہی ہو.
نہیں
مترا صاحبہ میں اس کا بھائی ہوں. کیا ممکن ہے مجھے پوری بات بتائیں؟
میں کچھ بھی نہیں جانتی.
تو پھر کون جانتا ہے؟
احسان پور صاحب جانتے ہیں.
میں ابھی ان کو فون کرتی ہوں.
ناہید کا موبائل.
ٹھہر جائیں وہ کچھ بتانا چاہتی ہے.
ہاں ناہید بتاؤ.
بتاؤ نا.
ہاں بتاؤ.
یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ کسے فون کرنا چاہتے ہو؟
احسان پور صاحب کو. سنو ناہید اب مجھے اپنا موبائل دے دو. مجھے ان کو فون کرنا ہے. تم تو کچھ نہیں بتا رہی. شاید وہ بتا دے کچھ.
موبائل دو نا. موبائل دو. ہماری کچھ سمجھ میں نہیں.
دیکھو ناہید مجھے موبائل دے دو.
نازنین ادھر آؤ.
ناہید پلیز کچھ بولو.
نازنین چلو ڈاکٹر آرامش کو فون کرتے ہیں اور ان کو یہ سچویشن بتاتے ہیں. ڈاکٹر کو فون کروں؟
ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
نازنین تم لوگ کیا کرنا چاہتے ہو؟
وہ گئی ہے ڈاکٹر کو فون کرنے.
ہیلو السلام علیکم.
हामिद कहाँ हो?
वहीं जहाँ होना चाहिए।
जिस गाड़ी का हमें इंतजार था वो आ गई।
वही लड़की स्टीयरिंग पर थी?
हाँ वही थी।
क्या चाहिए मैडम?
खाने पीने की चीज।
चीजें बहुत सी, आपको क्या पसंद है?
थोड़ा सब्र करो, जल्दी ना करो, मैं खुद ही देख लूंगी।
ये सब क्या है? जरूरत नहीं है, सब कुछ ले आया हूं, इसको वहीं पर रख दो। ये लो।
अच्छा तब ठीक है, एक च्युइंगम दे दो।
च्युइंगम चाहिए तो इस तरफ आइए।
हामिद।
हाँ बोलो ऐसा।
गाड़ी वहीं उसी जगह खड़ी है।
वो आदमी भी है वहाँ?
हाँ लेकिन थोड़ी देर से पहुंचा, इस वक्त दोनों गाड़ी के अंदर बैठे नाश्ता कर रहे हैं।
ठीक है।
सिर्फ रोटी लायो?
हाँ गर्म है, लो खाओ।
भाई मुझे भी पता है गर्म है, लेकिन खाली रोटी कैसे खा सकते हैं? कुछ हलवा, थोड़ा मक्खन, कुछ और भी ले लेते यार।
ये चलिए ना जाए,
हलवा खरीदने के लिए वक्त है, जाओ। रोटी यहीं रख दो यार।
मुझे दो मैं लाता हूं।
वजनी नहीं है।
पार्किंग तक 13 फ्लोर है। गाड़ी की चाबी कहाँ है?
वहां पर। तो मुझे इतला देते रहना, जब ऑफिस पहुंच जाए तो मुझे फोन करना, जब रवाना होना तब भी, और जब घर पहुंच जाए तब भी मुझे फोन करना।
अगर मुझे तुम्हें इतना ही फोन करना है तो फिर तुम जाए क्यों रही हो अपनी अम्मी के घर?
इसलिए कि मेरी बीमारी तुम्हारे काम में कोई रुकावट ना डाले, तुम मेरी फिक्र ना करो।
बात यह है कि तुम्हारी ये फिक्रमंदी मुझे और ज्यादा परेशान किए रहती है।
क्यों, तुम्हारे लिए यही काफी है? एक फोन करके मुझे बता दो कि पहुंच गया, रवाना हो गया, खुदा हाफिज, बस इतना ही।
शहर वापस चले तो ज्यादा बेहतर है।
अरे सईद, सईद तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो?
क्या कर रहा हूँ मैं, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो?
तुम छोड़ो मुझे, जाने दो।
नहीं, इतनी परेशानी की हालत में अगर तुम अपनी अम्मी के घर गई तो इससे ना मुझे कोई फायदा होगा ना तुम्हें।
सईद मेरी बीमारी मेरे हाथ में तो नहीं है, इस वक्त जो तुम्हारी हालत है बेहतर है मैं तुम्हारे पास ना रहूं।
बल्कि अगर तुम मेरे पास नहीं रहोगी तो और भी बुरा होगा, तुम वहां जाओगी तो उल्टे सीधे ख्याल तुम्हारे जहन में आएंगे जो शायद तुम्हारी बीमारी के लिए ठीक नहीं होंगे। सर तुम मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मैं 10 दिन छुट्टी ले रहा हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है?
तुम एक दिन की भी छुट्टी नहीं लोगे, तुम हर रोज ऑफिस जाओगे।
ठीक हो सहर? ठीक है,
तुम हर रोज जाओगे।
सहर
तुम्हें ये काम रोज करना है।
सहर, सहर अपने पास लाओ मुझे दो। ठीक हो? तुम्हारी दवाइयां कहाँ हैं? हाँ सहर तुम्हारी दवाइयां कहाँ हैं, स्प्रे कहाँ है?
ऊपर।
हाँ
ऊपर।
मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये आदमी घर से बाहर क्यों नहीं निकाल रहा, इसे ऑफिस भी तो जाना होगा।
क्या फ्रॉड लोगों का भी कोई ऑफिस होता है?
बहरहाल कहीं तो ऑफिस, कारखाना कुछ होगा फ्रॉड के लिए।
वो गली में जो घर था उस दिन गया था तुम्हें याद है? उस दफा हम लोग गए थे क्या वही उस फ्रॉड का ऑफिस नहीं है?
इन लोगों का ऑफिस एक बड़ी शानदार जगह पर है, एक आलीशान बिल्डिंग के अंदर है, ऐसी जगह जहां लोगों का आना जाना हो। वो सड़क तो बिल्कुल खाली थी, वो घर भी खाली था, मुझे नहीं लगता।
सही कह रही हो, इनका दफ्तर किसी शानदार जगह पर ही होगा, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर ही होना चाहिए। हाँ, शाबाश, तुम बहुत ज़हीन हो।
हाँ, और तुम भी बहुत।
क्या, बहुत ज़हीन हो?
हाँ, बहुत ज़हीन।
बहुत शुक्रिया।
चलो उठाओ, स्टेयरिंग पर बैठो, मैं जाकर टेलीफोन कार्ड खरीद
कर लाती हूँ। तुम बैठो, मैं ले आता हूँ।
जरूरत नहीं है, तुम आकर स्टेयरिंग पर बैठो।
अच्छा सुनो, कुछ खाने पीने की चीजें भी ले आना, खाया जाएगा, कुछ भी नहीं बचा है।
ठीक है। क्या तुमको ऑफिस नहीं जाना है आज?
नहीं। अपना मुंह जरा खोलो।
हेलो,
हेलो।
आपने अच्छी तरह सोच लिया बराजंदे साहब?
एहसानपुर साहब, मेरी बीवी को इस वक्त बहुत शदीद बुखार है, इसलिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा।
आप कहीं मत जाइए, मैं डॉक्टर और नर्स सब को लेकर आपके घर आता हूँ।
लेकिन ऐसा करेंगे तो हो सकता है मेरी बीवी और भी परेशान हो जाए।
अगर वो परेशान होती तो कोई बात नहीं, आपको खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो ज्यादा बुरा होगा। आप इंतजार कीजिए। खुदा
हाफिज।
सईद, सईद,
क्या चाहिए?
बैठ जाओ। तुम सदरा को एक फोन कर दो, कह दो कि गाड़ी लेकर मुझे लेने आ जाए, मुझे अम्मी के पास जाना है।
जब मैं खुद तुम्हारे पास हूँ तो फिर क्यों फोन करूँ तुम्हारे भाई आए हो तुम्हें ले जाएं?
मैं ये नहीं चाहती कि कोई सोचे कि मेरी बीमारी के बहाने तुम घर में बैठे हो।
कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा।
शादी के फौरन बाद ही मैंने अपनी बीमारी से तुमको बहुत परेशान कर दिया। अगर मुझे पता होता कि मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी तो मैं तुम्हें कभी न उलझाती। सईद,
ये बात बंद करो सहर। जब हम इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर किस लिए तुम रो रही हो? बस करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तुम बहुत अच्छे हो।
अरे वो कपड़ा जिससे तुम्हारा पैर धोता था वो कहाँ है? बावर्ची खाने में रखा है?
चमचों वाली दराज के नीचे है।
तुम आराम करो।
हम गाड़ी में हैं, हमारे साथ डॉक्टर रा साहिबा और मैडम शफी भी हैं, कॉम्प्लेक्स के सामने।
एहसानपुर साहब, हमारी बिल्डिंग की लिफ्ट मरम्मत के लिए बिल्कुल बंद कर दी गई है।
बहुत बुरा हुआ। बहरहाल डॉक्टर साहिबा के लिए और मैडम शफी के लिए, जो मुझसे जवान हैं, जीनों से ऊपर आना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मैं बहरहाल मैं ऊपर आपसे आकर मिलता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़। डॉक्टर साहब माफ़ कीजिएगा, मैं मजबूर, बिल्डिंग की लिफ्ट ख़राब है।
कोई ख़ास बीमारी नहीं है, बुखार किसी स्ट्रेस की वजह से है। मेरे ख्याल में आज कोई परेशान कुन बात सुनी है जिससे तनाव पैदा हो गया है, इसी वजह से उन्हें इतना शदीद बुखार है।
इसका क्या इलाज है?
आराम करें, सिर्फ आराम, कोई ख्याल रखें उनका। कुछ दिन शहर के शोहर को चाहिए कि उनका बहुत ख्याल रखें और नाराज ना होने दें।
किसी खास दवा की जरूरत तो नहीं है?
अभी लिख देती हूँ। इनकी इंश्योरेंस बुक कहाँ है?
सहर, तुम्हारी इंश्योरेंस बुकलेट कहाँ है? ये लीजिए।
शुक्रिया।
कोई बात नहीं।
बराजंदे के घर के जो हालात हैं तो उससे तो सारे रास्ते बंद हो गए हमारे।
मजबूरन हमें इसी मोहरे पर हाथ डालना होगा।
तजुर्बे साबित हुआ है, कुछ थोड़ा वक्त लगता है तब रिकी करने वाली टीम की जगह टारगेट किलिंग वाली टीम लेती है। इस तरह हमारे पास भी कुछ वक्त है।
वक्त किस काम के लिए?
इस मामले पर और ज्यादा गौर करने का वक्त नासिर।
अब तक हम लगातार गौर ही कर रहे हैं।
एहसानपुर साहब, अभी हम और गौर करेंगे।
कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है मुस्तफा साहब। बेहतर यह होगा कि कोई बड़ा वाक़ होने से पहले ही रवान बख्श और रेकी करने वाली टीम को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके बाद एक बयान जारी कर देंगे।
ठीक है, प्रेस रिलीज जारी कर दी, उसके बाद क्या नतीजा हासिल होगा?
वो अपना प्रोग्राम चेंज करने पर मजबूर हो जाएंगे।
प्रोग्राम बदल गया तो हम बहुत सारी चीज़ें गंवा देंगे।
मगर दूसरी तरफ इंजीनियर बराजंदे आराम और सुख से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे।
देखो फरामर्ज, ऐसा है कि प्रोग्राम तब्दील होने का मतलब प्रोग्राम खत्म हो जाना नहीं होता। इस नुक्ते पर गौर करो। तुम कैसे कह सकते हो कि उन्होंने मुतबादिल रास्तों का पहले इंतखाब नहीं कर रखा होगा?
अगर हम अपने आदमियों में से किसी को बराजंदा जहां पर रख देते जिस अंदाज में काम करता तो शायद हमें अपना हदफ यकीनन हासिल हो गया होता।
बिल्कुल सही वक्त पर आप अपनी अहलिया के लिए सूप लेकर जा रहे हैं।
तो क्या आप जा रही हैं?
जी हाँ, अब मेरे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। आपकी अहलिया का बुखार उतर चुका है, उनका ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल है, उनकी तबीयत भी ठीक है। अलबत्ता मैडम शफी सुबह तक आपकी अहलिया के साथ रहेंगी, वो फोन पर मुझसे रब्ता रखेंगी, अगर कोई मुश्किल पेश आई तो मुझे फौरन इत्तला देंगी और मैं फौरन आ
जाऊंगी। ये तो बहुत है, बहुत शुक्रिया। इसके बाद आपको पहुँचा देता हूँ।
नहीं, जरूरत नहीं है, मेरे शौहर बिल्डिंग के गेट पर इंतजार कर रहे हैं।
डॉक्टर साहिबा, वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं।
एहसानपुर साहब को मालूम है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए।
अरे हाँ, लिफ्ट भी अब ठीक हो चुकी है, अब आप लिफ्ट से नीचे जा सकते हैं।
ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
लाइए, मुझे दीजिए।
ये लीजिए।
मैडम शाफे के लिए खाना मंगवा लिया है?
बस आ रहा है।
शुक्रिया।
ले आया। जी। ऊपर आ जाओ। इतनी देर क्यों लगा दी?
माफ कीजिएगा जनाब, मैं तो पहले भी आपके लिए पिज्जा लेके आया था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब क्या हुआ ये प्रॉब्लम हो गई?
क्या कहना चाहते हो, मैं समझा नहीं।
एक आदमी लिफ्ट के पास था, जब उसे पता चला कि फ्लैट नंबर 83 के लिए खाना लाया हूं, तो जब तक उसने पिज्जा चेक नहीं कर लिया मुझे ऊपर नहीं आने दिया।
जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ।
आपकी
अहलिया की तबीयत कैसी है बराजंदे साहब? इनकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है, मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है एहसानपुर साहब। देखिए, मैं इस कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ और आपके अहलकारों को ये बात मालूम होनी चाहिए।
हुआ क्या बराजंदे साहब?
आपके अहलकार ने इस पिज्जा को क्यों चेक किया जो मैंने मंगवाया था?
आपकी सिक्योरिटी के लिए हमारे अहलकार की जिम्मेदारी है कि जो लोग भी रात के वक्त आपके टावर में दाखिल हों उन पर अच्छी तरह नजर रखें।
एहसानपुर साहब, आप जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, इस बिल्डिंग में मैं एक आम इंजीनियर की तरह रहता हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे पड़ोसी मुझको किसी और निगाह से देखें।
नाराज मत होइए बराजंदे साहब, हम पेशगी हमांगी से मामले को हल कर सकते हैं।
कैसी हमांगी एहसानपुर साहब?
दरवाजे पर जो एहलकार खड़ा है उसका नाम असद है, माहिर आदमी है। मैं अभी इस एहलकार का मोबाइल नंबर आपको भेज देता हूँ, आप आइंदा जब भी रात के वक्त अपने फ्लैट में किसी का आना जाना देखें तो उसे इस बारे में बता दीजिए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है राजन साहब, क्या ख्याल है आपका?
ठीक है, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
कैसे हो?
ठीक हूँ।
हमेशा की तरह इस वक्त भी ख्यालात तुम्हें सोने नहीं दे रहे?
हमेशा की तरह।
ऑफिस की फिक्र है?
नहीं, तुम्हारे वापस आने के बाद अब कोई फिक्र नहीं है।
क्या मैं भी तुम्हारे साथ जागती रहूं?
नहीं, तुम जाकर सो जाओ।
ठीक है।
नासिर, फौरन कपड़े बदलो और मेरे घर पहुंच जाओ। आतिया से गाड़ी ले लो। नहीं, कोई खास बात नहीं है, बस मेरे जहन में ख्याल आया है। सर्दी तो कोई ऐसे खास नहीं है।
नहीं, बिल्कुल ठीक है।
क्या रहा है, वहां बैठा जाए?
हाँ ठीक है।
इस लाल मछली को हौज में देखा?
हाँ। क्या मैडम सो रही हैं?
जब तक मैं ना सोऊं उनको भी नींद नहीं आती।
क्या कहना चाह रहे थे?
बैठो। सियावश मशरकी, थिएटर में जो अतिया के साथ है उसे कितना पहचानते हो?
बहुत कम।
अच्छा, तुम्हारी राय क्या है?
क्या वो मान जाएगा?
मेरे ख्याल में अगर नासिर सियावश मशरकी से कहे तो इम्कान है मान जाए।
फर्ज करो मान लिया, तो तुम्हारा क्या, तुम मान जाओगे?
क्या तुम इस तजवीज के फेवर में नहीं हो?
नहीं, मुखालिफ तो नहीं हूं, लेकिन जरा तश्वीश में हूं।
तश्वीश होना फितरी भी है, हम सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं।
अगर सूरत हाल कंट्रोल से बाहर निकल गई तो?
हमें इस तरह काम करना होगा कहीं कोई गड़बड़ ना हो।
अगर सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो गई तो अलग सिचुएशन होगी उस वक्त।
अगर हम सारे काम सही तरह अंजाम दे सकें तो फिर मैं तैयार हूं, मैं मुवाफिक हूं।
अंजाम देंगे। आती आओ, फोन करो।
कितने बदकिस्मत हैं वो लोग जिनमें सब्र और तहम्मुल नहीं होता। क्या ये सच नहीं है कि जख्म रफ्ता रफ्ता मुंदमिल हो जाते हैं? जिंदगी एक कॉमेडी है उनके लिए जो गौर फिक्र करते हैं, अलमनाक दास्तान है उन लोगों के लिए जो महसूस करते हैं। हैरत अंगेज।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम मशरकी साहब, आज रात मेरे वालिद मुस्तफा अंकल के साथ आपके घर जाना चाह रहे हैं।
अरे अतिया साहिबा, क्या आपने वालिद साहब को बता दिया?
नहीं।
हाँ, तो फिर किस वजह से वो लोग मेरे घर आना चाहते हैं?
नहीं मालूम, मुझसे कहा कि प्रोग्राम के बाद आपको इस बारे में बता दूं।
बस इतना ही, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता।
हाँ ठीक है, उनको आने दीजिए। मगर एक सवाल है, आपने किसी और से कुछ तो नहीं बताया?
मैं सिर्फ अपनी फूफी से बात करती हूँ, सारी बातें फूफी को बताती हूँ।
तो फिर ये इम्कान है कि आपकी फूफी नहीं आपके वालिद साहब को बता दिया होगा?
मुमकिन है।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।
आ जाओ अंदर।
फूफी जान।
क्या है मेरी जान?
दरअसल मैं पूछना चाहती थी,
इतना मत सोचो, पूछो ना।
कुछ नहीं, बाद में पूछ लूंगी आपसे।
एक मिनट रुको, बात क्या है? बहुत खुश नजर आ रही हो।
हमारा थिएटर जिसने भी देखा पसंद किया, मेरा रोल भी सबको पसंद आया है।
अरे वाह, तो क्या मुझे अपना थिएटर नहीं दिखाओगी?
फूफी जान, आपको अब अपने साथ ला सकते हैं।
अरे वो तो बहुत मसरूफ इंसान, तुम बस मुझे एड्रेस दे दो, मैं गाड़ी बुला लूंगी, आ जाऊंगी। कोई, मैं खुद तो आ ही सकती
हूँ। मैं जानती हूँ।
तो लिख के देना, भूल नहीं जाना।
ठीक है फूफी जान।
अम्मी जान, रात को कुछ मेहमान आने वाले हैं।
खाने पर रुकेंगे?
नहीं मालूम।
क्या तुमने उनसे नहीं कहा खाने पर रुके?
मेरी किसी से बात नहीं हुई, उन्होंने खुद ही फोन किया था कि आ रहे हैं, लेकिन खाने के बारे में बात नहीं हुई।
तो तुम खुद पूछ लेते बेटा, तुमने क्यों नहीं पूछा?
अम्मी जान, आपको पूरी बात मालूम नहीं है, मैंने उनसे किसी से बात नहीं की कुछ। उन लोगों ने फोन किया कि आ रहे हैं, मैंने कहा कि ठीक है आ जाओ भाई।
अच्छा ये बताओ, दूसरा कौन था?
अतिया साहिबा।
अच्छा, तो आखिरकार उसके वाइफ से बात कर ली?
अभी तक तो नहीं।
तो उसने खुद कहा होगा?
नहीं।
बहरहाल किसी ना किसी ने तो उसके वालिद से बताया होगा।
नहीं पता।
खाना तैयार कर लूं?
नहीं पता।
वो कितने बजे आएंगे?
थिएटर खत्म होने के बाद।
तुम खुद तो कल रात 10 बजे आए थे, आज भी यकीनन 10 ही बजे आओगे।
अरे नहीं, मेहमानों की वजह से थोड़ा जल्दी आऊंगा।
तो फिर मैं रात का खाना तैयार रखूंगी, जरूरी है।
शुक्रिया अम्मी जान, पका लीजिएगा।
मैडम तवक्कुल, मैडम तवक्कुल, माफ कीजिएगा, क्या मैं आपका एक मिनट ले सकता हूँ?
क्या काम है?
असल में कुछ दिनों से मैं एक बात कहना चाहता था आपसे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हो पाई।
क्या कहना चाहते हैं आप?
देखिए मैडम तवक्कुल, अरे कैसे कहूँ मैं आपसे, मुझे पता नहीं आप मेरे बारे में क्या राय रखती हैं। आप बहुत अच्छी लड़की हैं और मैं बहुत चाहता हूँ कि आपसे मेरी शादी हो जाए, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है।
मैं अकेले तो कोई फैसला नहीं कर सकती, मेरे वालिद फैसला करेंगे।
साकेत मोहतरमा, बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए।
बैठ जाइए सब जी।
कई सालों से नायत से तुम्हारी दोस्ती है। नायत को क्या डिप्रेशन या नफसियात की बीमारी थी?
नहीं।
आपको यकीन है?
देखिए इससे मेरे घरेलू ताल्लुकात हैं, उसकी शादी से पहले से, पिछले अस्पताल से या हमारे अस्पताल में आने से पहले से मैं उसे जानती हूँ। नायत हमेशा से बड़ी खुश मिजाज औरत थी, खुश रहती थी, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि डिप्रेस होती। उसके माँ बाप की हमारी हालत भी बहुत अच्छी है, उसे अहमियत देते थे। उसने खुद भी बड़ी मेहनत से पढ़ाई की, पढ़ाई से उसे दिलचस्पी थी। पढ़ाई पूरी होते ही उसने नौकरी शुरू कर दी। आप जानते हैं कि वो अपना काम बहुत तवज्जो और डिसिप्लिन से करती थी।
हाँ वाकई काम तो अच्छा था, लेकिन डॉक्टर रफत कहती हैं कि उसके शौहर की किसी और से शादी उसे जहनी तौर पर इतना मुतासर नहीं कर सकती कि वो बात ही ना कर पाए। ज्यादा इम्कान ये है कि कोई पुरानी बीमारी है। کیا کوئی ایسی بات ہے جو مجھے نہیں بتائی؟
اسے اسپتال میں رہنا پڑے گا؟
ہاں، ڈاکٹر کو تھوڑا وقت تو چاہیے پوری طرح علاج کرنے کے لیے۔
ناہید کے علاج میں کتنا وقت لگے گا؟
ڈاکٹر نے کہا ابھی ہم صحیح نہیں بتا سکتے، لیکن ایک ہفتہ تو لگے گا۔
کیا اس کے گھر والوں کو اطلاع دوں؟
اس کے بچوں کو مت بتانا، مگر اس کے بھائی اور بہن کو بتا دو۔ میں ڈاکٹر رفا سے رابطے میں ہوں، جیسے ہی بیماری سمجھ میں آئی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ خدا حافظ۔
بہت شکریہ۔ بیٹھ جائیے نازنین، یہاں ہو۔ نادر سے کہہ دو کہ بچوں کے پاس رکے رہیں۔
لیکن اسے پتا ہونا چاہیے۔
بعد میں تم خود ہی نادر کو بتا دینا، ابھی بچوں کو کچھ نہیں پتا چلنا چاہیے۔
نادر، میں جا رہی ہوں ڈاکٹر کے پاس بات کرنے۔
السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، میں ناہید کی قریبی دوست ہوں
جی،
اور یہ ناہید کی بہن ہے۔ نادر، بچوں، خدا حافظ، آؤ اپنی امی کے قریب۔